नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। माँ भारत का शांति पर्व और युधिष्ठिर महाराज परम शांति के लिए बैठे, अर्जुन को युद्ध से पहले मोह हुआ वैसा ही मोह युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उनके पास बैठे हुए हैं। कल के प्रसंग में युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई देखो, हमारे द्वारा जीवन में बड़ी भारी गलती हो गई, कितने आदमी मारे गए, अब हम जंगल में जाएंगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, खूब सन्यास की कल व्याख्या की। तो अर्जुन थे उन अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज की बात सुनी तो वे खड़े होकर युधिष्ठिर जी महाराज को कहने लगे, अर्जुन इस समय बनावटी क्रोध में बोलने लगे, बड़े भाई है, वास्तविक क्रोध तो करना नहीं चाहिए, पर ऊपर ही ऊपर से कुछ क्रोध दिखाते हुए अधिक क्षिप्त है इव और युधिष्ठिर जी के ऊपर आक्षेप सा लगाते हुए अपने वाक्यों को, अपने सिद्धांत को दृढ़ता के साथ कहते हैं। श्रीकृणी परिसन लिहन, माने जीभ से अपने राफों के ऊपर उनको गीला कर रहे हैं, यह सब बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। यह एक बोलने का, गर्व से बोलने का तरीका है। स्मयमान है, महातेजा, गर्वयुक्त बोलने के लिए है करके बोलते हैं। अर्जुन कहने लगे, अहो दुखम, बड़े दुख की बात है, हे युधिष्ठिर महाराज, आप जैसा ज्ञानी महात्मा इतनी तुच्छता पर चला गया कि राज्य को छोड़कर जंगल में चला जाऊं, ये तो आपका अमानवीय कार्य है। आपने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया कि जिससे अब आप जनता से मुंह छिपाकर जंगल में रहना चाहते हैं। यदि आप यूं कहें कि मेरे द्वारा कितने मनुष्य मारे गए, तो ये बात आपको युद्ध से पहले सोचने की थी। स्वधर्म के द्वारा शत्रु का नाश करना ये क्षत्रिय का काम होता है और क्षत्रिय धर्म के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है। आपने न्याय के द्वारा, बल के द्वारा, क्षात्र धर्म के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त किया है और अब आप इसको कायरों के समान छोड़कर जाने की बात बोलते हो। व्यर्थ में ही आप शोक करते हो, घर छोड़कर जंगल में वो जाता है जो महादरिद्री होता है, जो संसार में बड़ा निराश हो जाता है, जिसके परिवार में कोई नहीं रहता है, सब जगह जिसकी अपकीर्ति होती है, स्त्री पुत्र आदि पशु वगैरह जिसके पास होता ही नहीं, वो आदमी जंगल में जाए अथवा भीख मांगकर निर्वाह करे, ये कापाली वृत्ति होती है। मन खप्पर ले ले करके मांग मांग करके खाना, ये समृद्धिशाली राजा के लिए कलंक की बात होती है, ये नीच वृत्ति है, आलसियों की वृत्ति है। आपने धर्म पूर्वक इस अर्थ को प्राप्त किया है, इस राजकुल को प्राप्त किया है, कृष्णाम वसुंधराम जीत्वा पूरी पृथ्वी को आपने जीता है, और मौढ़्यात हित्वा वनम प्रतिष्ठा से और मूर्खता से आप इसको छोड़कर जा रहे हो। आपको मालूम है इससे क्या होगा, लुटेरे लोग सब लूट लेंगे, प्रजा की कोई रक्षा नहीं करेगा, और कोई यज्ञ आदि पवित्र काम करने लगेंगे तो दूसरे लोग उसको नष्ट कर देंगे, इससे अधर्म फैलेगा और उस अधर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। जंगल में जाकर भिक्षा से निर्वाह करना यह एक धर्म है, परंतु यह धर्म क्षत्रियों का नहीं है, ये ऋषि मुनियों का धर्म है। और ऐसे ऋषि मुनि जिनके पास कल क्या खाएंगे इसकी कोई सामग्री नहीं है, वे ही वास्तव में जंगल में जाने के योग्य होते हैं। आपने धर्म पूर्वक धन को कमाया है, और जो व्यक्ति धर्म पूर्वक धन को कमाता है वो धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है। यदि आप ये छोड़कर चले जाएंगे तो किसको आप दंड देंगे, क्योंकि दंड देने वाला कोई राजा नहीं रहेगा। आपके पास अभी तो लोग मांगने के लिए आते हैं, उस समय जंगल में चले जाएंगे और आप स्वयं दरिद्री हो जाएंगे, आपके पास कोई राजा समझकर मांगने के लिए आएगा तो आप उसको क्या दोगे। यह कहते हुए आपको लाज नहीं आएगी कि मैंने तो मेरा सारा राज्य छोड़ दिया, कायरों के समान मैंने पलायन कर लिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा बोलोगे। देखो आज आपको राजलक्ष्मी मिली है, राजलक्ष्मी से आप धर्म कमाओ, राजलक्ष्मी से आप स्वर्ग पर अधिकार करो, राजलक्ष्मी के द्वारा प्रजा का पालन करो, इस राजलक्ष्मी के द्वारा बहुत बड़ा धर्म आपके द्वारा सिद्ध हो सकता है। यदि आपके पास राजलक्ष्मी नहीं होगी तो जिस प्रकार गर्मी में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, चली जाए, जिस प्रकार गर्मी में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, उसी प्रकार से मंद बुद्धि की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आप विचार करो, धन को आप छोड़ दोगे और धन की व्यवस्था जब आपके पास नहीं रहेगी और कभी अर्थ की इच्छा हो गई तो उस समय आपकी क्या दशा होगी। इसलिए अर्थ के द्वारा धर्म, काम, स्वर्ग, हर्ष, ये सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आज आप लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे तो संसार में आप बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे। क्या क्षत्रिय धर्म पालन करने से मुक्ति नहीं होती है? क्या संन्यास लेने से ही मुक्ति होती है? ऐसा किस ऋषि ने किस शास्त्र में कब कहा है? इस संसार में कृष का अर्थ क्या है? कृष माने कमजोर। कमजोर वो होता है जिसके पास धन नहीं, जिसके पास गाय नहीं, जिसके घर में अतिथि आए और भूखे चले जाए, वो राजा कृष होता है, वो कमजोर कहलाता है। केवल शरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं कहलाती है। कोई आपको धर्मात्मा युधिष्ठिर समझकर आपके पास वन में आएगा और आप उसको क्या खिलाओगे? आज तो आप राजा हो, बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो, लोग तो आपको उस समय भी राजा मानकर जाएंगे, आपके पास आएंगे, क्या खिलाओगे? इसलिए आपका विचार कायरता का विचार है। आपको ये वन में जाने का विचार छोड़ देना चाहिए। देवता और दैत्य एक ही वंश में एक ही बाप के पुत्र है, परंतु देवता लोग धर्म के लिए युद्ध करते हैं। उनको आज तक युद्ध करते हुए कभी क्षोभ नहीं हुआ। उनके मन में ये विचार नहीं आया कि हम भाई भाई क्यों लड़ते हैं। वे यही विचार करते हैं कि अन्याय के ऊपर न्याय का शासन रहना चाहिए। आपका ये युद्ध था, ये अन्याय के ऊपर न्याय का ही शासन था। कृष्णम तदेव तत्श्रेय है यद्यप्यादतेन्यत है। देखो, दूसरों को युद्ध में जीतने के बाद जो कुछ वो प्राप्त करता है तो उसका धर्म भी वो छीन लिया करता है। हमने किसी के साथ कोई अपकार का काम नहीं किया है, हमने न्यायपूर्वक युद्ध किया है। आज स्वर्ग में बैठे हुए महाराज दिलीप हैं, राजा नृग हैं, नहुष हैं, अंबरीश हैं, मानधाता हैं, वो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी आज धर्मात्मा युधिष्ठिर के हाथ में गई है। अब ये बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और इन यज्ञों से पृथ्वी के ऊपर आने वाले प्राणियों को बड़ी शांति मिलेगी। परंतु महाराज, यदि आपने अश्वमेध आदि यज्ञ न किए और यूं ही राज्य लक्ष्मी को छोड़कर चले जाओगे तो इन सब राजर्षियों की भावना का पाप आपको लगेगा। विश्वरूप महादेव भगवान भी सर्वमेध नामक यज्ञ किए थे और उन्होंने उस यज्ञ के अंदर अपना सर्वस्व आहूत कर दिया था। यह तो एक शाश्वती परंपरा है। एक राजा जीतता है, दूसरा उसके ऊपर शासन करता हुआ धर्म को आगे बढ़ाता है। इसका अंत कभी नहीं हुआ। महान दाशरथ है पंथा सराजन कुपथंगम है। यह एक बड़ा भारी विचित्र मार्ग है जिस पर दस रथ चलते हैं। दाशरथ है पंथा, दस रथ। कई प्रकार के धर्म के उपाय किए जाते हैं, वो दाशरथ पंथा, दाशरथ मार्ग कहलाता है। इसलिए अभी भी समय है, आप राज्य आदि को छोड़कर जंगल में जाने का कुत्सित आचरण न करें। थोड़ी देर युधिष्ठिर महाराज चुप रहे। चुप रह करके कहने लगे, ऐ अर्जुन, तुम हमसे छोटे हो, हमारी बात का तुम विचार करो। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर मेरे मन में तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति है और इसी भक्ति के कारण तुम मुझे यहां राज्य में रखना चाहते हो। तुमने कहा कि वन में जाना कायरों का काम है और साथ में यह भी कहा कि वन में रहना तो ऋषि मुनियों का काम है। तो ऋषि मुनि कोई अलग से योनि तो नहीं होती ना? ऋषि मुनि अपने में से ही तो बनते हैं, मैं अकेला हुआ और ऋषि मुनि बना, तुम सबको छोड़ दूंगा तो ऋषि मुनि बन जाऊंगा, कैसे रहूंगा वो मैं तुमको बता देता हूं। देखो अर्जुन, बड़े भारी सुख का त्याग करना ये महान तप होता है। जंगल में क्यों रहूं, यही रह सकते हो, ये जो तुमने बात कही ये बात मुझे इसलिए उचित नहीं मालूम देती कि बड़े बड़े राजा लोग राज्य लक्ष्मी का त्याग करके वन में गए थे, क्या उनको दोष लगेगा पाप लगेगा? राज लक्ष्मी का त्याग करते हुए वन में रहने वाला व्यक्ति कभी दोबारा अर्थ आदि की चिंता करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसने उस मार्ग को देख लिया है, खूब लक्ष्मी मिल गई उसको, अब वो दोबारा इच्छा क्यों करेगा? प्रातःकाल सायंकाल मैं ऋषि मुनियों के पास जाकर उनसे मंत्र लेकर यज्ञ करूंगा जो हमको सामग्री मिलेगी, और ऋषि मुनियों का वेश बना लूंगा, सर्दी गर्मी सब सहन करूंगा, जो वहां पशु पक्षियों की आवाज आएगी उसी में मैं प्रसन्न रहूंगा। अपने मन की वृत्तियों को घुमाने का नाम ही तो ऋषि मुनि होना है। बड़ी अच्छी सुगंध आएगी वृक्षों के फूलों की, बड़े अच्छे रमणीय गुफाएं देखने को मिलेंगी, वानप्रस्थ में रहने पर हमारे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ पक्का फल मिल जाएगा, कहीं कच्चा फल मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वो मैं पितरों को अर्पित करूंगा, वाणी से उनको प्रसन्न करूंगा, नदियों का जल मिलेगा जल से उनको प्रसन्न करूंगा। इसलिए वनवासी मुनियों के लिए शास्त्र में जो नियम बताए सबका पालन करूंगा। भिक्षा मांगना मुनि का धर्म जो तुमने कहा तो वो मैं अपना धर्म स्वीकार करूंगा, मुंडित रहूंगा, केवल एक अकेला रहूंगा, और अपने मन के वृत्तियों में जो परमात्मा की वृत्ति है उधर ही ध्यान दूंगा, मन के और विचारों पर मैं नहीं जाऊंगा। शरीर पर धूल पड़ी है तो पड़ी है, जंगल के अंदर कई ऐसी कुटियां हैं जिनमें कोई रहने वाला नहीं है, वहां जाकर रह जाऊंगा, वृक्षों की जड़ों के नीचे पड़ा रहूंगा, कौन मेरा अपना है कौन पराया है, किसका क्या बिगड़ गया किसका क्या हो गया, ये मेरे वृत्ति में ही नहीं आएगा। किसी के मरने पर शोक नहीं करूंगा, किसी के अनुकूलता में हर्ष नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार से और शरीर से जब कोई संबंध नहीं रहेगा, जब मेरा कोई निंदा स्तुति से मतलब नहीं रहेगा, कोई परिग्रह नहीं रहेगा, तो मुझे क्यों हर्ष शोक होगा? हर्ष शोक होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं जंगल के अंदर बुद्धिमान होकर नहीं रहूंगा, एकदम बहरा रहूंगा, मूर्ख की तरह रहूंगा, अंधे की तरह रहूंगा, न किसी को देखूंगा न किसी की सुनूंगा न किसी से बात करूंगा। मुझे किसी भी आदमी से ये भी नहीं पूछना है कि अमुक मार्ग कहाँ जाता है उधर मैं जाऊं, क्यों? मुझे जाने आने का संकल्प ही नहीं रखना है। गमने निरपेक्षश्च और पश्चात अनवलोकन, आगे बढ़ता जाऊंगा और पीछे की तरफ देखूंगा ही नहीं, कहां आ गया कौन आ गया क्या आ गया, सरलता से अपने मार्ग के अनुसार चलता रहूंगा। देखो अर्जुन, समुदाय के बीच में अपने स्वास्थ्य अपने स्वभाव को औरों के स्वभाव के साथ अनुकूल बना लेना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब मैं अकेला ही रहूंगा तो मुझे केवल अपने ही स्वभाव के विषय में चिंतन करना हो सकता है, दूसरों के स्वभाव तो मेरे वृत्ति में नहीं आएंगे ना। इसलिए मुझे जंगल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, मुझे कभी खाने को थोड़ा मिलेगा, कभी मुझे अस्वादु कटु और ऐसा खाने को मिलेगा, अप्रिय खाने को मिलेगा, कोई बात नहीं। और पूर्वालाभेन जातोचित अन्येष्व विचरन, और यदि एक घर में मुझे कुछ नहीं मिला तो दूसरे घर में चला जाऊंगा, और वहां नहीं मिला तो तीसरे घर में चला जाऊंगा। ऋषि मुनियों को सात घर में जाने की छूट है, और जब घर में धुआं बंद हो जाए, सब घर में भोजन कर लेवे, और वे लोग भोजन बांटने के लिए इधर उधर अपने पात्र संसार को समाप्त करें, वहां थाली पहुंचानी है, वहां ये पहुंचाना है, ऐसा सब व्यापार बंद हो जाए, उस समय जाकर के घर में भिक्षा लेनी चाहिए, और एक समय में भिक्षा करनी चाहिए, एक समय खावे, एक समय भूखे रहे। उस समय में एक घर, दो घर, तीन घर या पांच घर में जाकर भिक्षा ले सकता है, परंतु वहां भी विगत भिक्षु के कोई एक भिक्षुक चला गया उस घर पर, तो उस घर पर नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ के ऊपर कभी भिक्षुक भार नहीं बनता है, वो दूसरे घर की तरफ चला जाए। परिचितों के यहां भिक्षा लावे, ये भी भिक्षुक का धर्म नहीं है। भिक्षा लेते समय कोई किस प्रकार की बात बोलता है, कोई कैसी बात बोलता है, कोई अपमानित होकर के देता है, वो भिक्षा अमृत के समान मीठी होती है। धिकारते हैं, आयो एट मोटो मांगण, हूं काम करनी करी दे, फोकट में खावे और फिर टुकड़ा देवे, बस वो अमृत के समान होता है। मुनि को ऐसा होना चाहिए, यदि कोई एक भुजा के ऊपर कोई करोती फेरता है, और चंदनेन एकमुक्षत है, और एक भुजा के ऊपर कोई चंदन लगाता है, दोनों अवस्थाओं में उसको शमशांत होना चाहिए। जो उसकी भुजा को काटता है, तेरा सर्वनाश हो जाए, ऐसा कभी न कहे। और जो ये हाथ को पूजते हैं, बड़ा चंदन लगा करके आदर करते हैं, उनको ये कभी न कहे कि जाओ भाई तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी को आशीर्वाद देना और किसी को श्राप देना, इन दोनों से ऋषि मुनि ऊपर उठा हुआ होता है। यह काश्चित जीविता शक्या, जो कुछ एक आदमी कर्म करता है जीने के लिए, उन सब का उसे त्याग कर देना चाहिए। सर्वास्था समभित्यज्य निमेषादि व्यवस्थित है, शरीर निर्वाह के लिए, केवल जीने के लिए उसको भिक्षा लेनी चाहिए, और उसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे तो शरीर में भी आसक्ति नहीं रखनी है। जब शरीर के आराम की इच्छा होती है, तब उसके मन में धन आदि का महत्व बढ़ता है। कितनी बढ़िया बात है। और जब मैं शरीर आदि में आसक्ति नहीं रखूंगा, तो फिर मुझे भिक्षा मांगने में क्या शर्म आएगी। तुमने हमको कहा कि तुम्हारे पास दरिद्री लोग आएंगे, तुम उनको क्या देंगे, तो ये मेरे पर उस समय लागू नहीं पड़ता कि मैं उनके लिए वो काम करूं जो मैं पहले करता आया था। क्योंकि दान वही श्रेष्ठ होता है जो उसके पास चीज होती है और उसमें से दिया जाता है। जब उसके पास है ही नहीं, तब उसके ऊपर दान विधि लागू भी नहीं पड़ती है। इसलिए वीतराग होकर, मन में संतुष्ट होकर, मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगा। अर्जुन, मैं तृष्णा के वशीभूत होकर, अज्ञान से प्रेरित होकर पाप किया है, इसलिए अब इस पाप के रास्ते से मुझे हटना ही होगा। जब तक मेरी आयु रहेगी, मेरे प्राण क्षीण नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे ये शरीर का निर्वाह करना है। देखो किसी भी मनुष्य के सामने कोई भी परिस्थिति आती है वो उसके कर्म के फल के अनुसार आती है। मेरे जीवन में यदि कोई प्रतिकूलता आएगी तो वो मेरे पाप का फल होगा, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। मैंने पाप किया अतएव मेरे सामने परिस्थिति आई। प्रतिगृह्णाति यत् तत् पापं कर्तु कर्म फलम् हि तत्। इस प्रकार से रथ के पहिए के समान संसार चक्र में घूमते हुए जीव समुदाय अपने प्रारब्ध का फल भोगते रहते हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। देखो अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जितने शरीर के कष्ट हैं ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। यदि आप संसार में सुखी होना चाहते हैं तो संसार के सुखों का त्याग करो, आपको महान आनंद मिलेगा। अपारमिव चास्वस्थम संसारम त्यजतः सुखम। संसार अपार है, अपार, इसका कोई पार नहीं है। और ये संसार क्षण भंगुर भी है। इस संसार में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए इसके सुखों का त्याग ही सबसे बड़ा आनंद का कारण है। देवता लोग भी देव योनियों को छोड़कर पशु पक्षियों में आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऊंचे लोकों में जाकर नीचे गिर जाते हैं। क्या है वो? वो अपने कर्म के फल के कारण से ऐसा होता है। इसलिए कितना बड़ा मुझे आज विवेक प्राप्त हुआ है, इतनी बड़ी राज लक्ष्मी के त्याग का एक बहुत बड़ा मेरे मन में भाव पैदा हुआ है। अर्जुन, ये भाव तुम्हारे वचनों से टलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे तो वन में जाना ही होगा। ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो भीमसेन खड़े हो गए। अब भीमसेन ने कहा, महाराज जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और जिसमें ज्ञान नहीं होता है उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा आपकी हो रही है। भीमसेन बोले, क्योंकि आप अपने को बहुत बड़ा श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी समझ रहे हो जबकि आपकी बातें कोई ठोस मालूम नहीं दे रही हैं, आपकी बातों में आलस्य झलकता है। यदि आपको राज्य लक्ष्मी छोड़नी थी तो ये महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? द्रौपदी के भरी सभा में अपमान का बदला केवल मैं एक अकेला इन सो को मारकर लेने की प्रतिज्ञा कर चुका था तो ये काम मैं अपने आप ही करता, आप उस समय ही वन में चले जाते। आपको अज्ञातवास मिला था, 12 वर्ष तक आपको वन जीवन मिला था, उसके बाद वापिस आप क्यों आए? 13 वर्ष के बाद क्यों प्रकट हुए और क्यों आपने युद्ध रचा? उसी समय आप चले जाते, कह देते दुर्योधन मैं तो अब राज्य को वापस लेने वाला नहीं हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यदि शरीर निर्वाह के लिए भीख मांगने तक आप उतारू हो गए तो ऐसा भीषण महाभारत का युद्ध करके आपने सचमुच हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। हमने तो यही सोचा था कि युधिष्ठिर जैसा धर्म पुरुष हमारा बड़ा भाई है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए हम आपके आज्ञा के पालन में बने रहे। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे बड़े भाई साहब इतने बड़े कायर निकलेंगे कि वे राज लक्ष्मी को छोड़कर अपने धर्म को छोड़कर जंगल में जाने की कभी सोचेंगे। महाराज इस समय आपका वन में जाना ऐसे ही है जैसे कोई आदमी बहुत बड़े वृक्ष पर चढ़कर शहद प्राप्त करे और उस शहद को चाटने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका शहद निकालना व्यर्थ हो, उसी प्रकार से आपका युद्ध करना भी व्यर्थ कर्म हो गया। कोई आदमी शत्रुओं का वध करने के बाद स्वयं का ही वध कर ले, स्वयं ही मर जाए, तो उसका कर्म कैसा होता है? व्यर्थ कर्म होता है। अरे तूने शत्रुओं को मार दिया, अब खुद को मार देता हूं, क्या फायदा हुआ? ऐसे ही आपने युद्ध किया और अब के मैं वन में जाना चाहता हूं। जैसे कोई भूखा मनुष्य है, उसको खूब अच्छा भोजन मिल गया और वो उस भोजन का उपयोग ही नहीं करे और भूख लगी हुई है और वो यूं ही उस भोजन को पागलपन की तरह से पात्र को उड़ेल दे तो उसको लोग मूर्ख बताते हैं, पागल कहते हैं। इसी प्रकार से आज आपने पागलों की सी बात कही है। क्या राज लक्ष्मी के रहते हुए कल्याण का मार्ग बंद हो गया कि आप इस प्रकार से वन में जाने की बात सोचते? आपत्काले ही संन्यास है। संन्यास तो कोई बड़ी भयंकर आपत्ति का समय होता है तो लिया जाता है, या तो शत्रु भी शत्रुओं ने घेर लिया हो चारों तरफ, तब शत्रुओं के सामने कहते देखो भाई अब मैंने संन्यास ले लिया है, अब आप कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, हम छोड़ के जाते हैं। या तो ऐसा करो, या जरया भी परितेन, या शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण बुढ़ा हो गया, राज्य का उपयोग कर नहीं सकता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तब कहें भाई अब कोई दूसरा राज्य करो, हमारे तो अब सोचने समझने की शक्ति नहीं, संन्यास ले लो। आपने तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं की शत्रुओं के सामने, आपके राज्य से जनता को कितनी बड़ी आशाएं थी कि दुर्योधन के बाद ये महाराज युधिष्ठिर का राज्य यहां धर्म पूर्वक चलेगा, इतनों के साथ आप विश्वासघात करना चाहते हैं। वानप्रस्थ की महिमा बहुत है, हम भी जानते हैं, पर वानप्रस्थ पुत्र पौत्रादियों के पालन में जो असमर्थ होता है, देवताओं का ऋषियों का अतिथियों का जो आदर नहीं करता है, और जो ज्यादा विचार करने लायक नहीं रहा है, वो व्यक्ति वानप्रस्थी होकर अब घर छोड़ सकता है। महाराज विचार करो, यदि वन में रहने से ही कल्याण होता है तो कितने पशु वन में फिरते हैं, क्या ये सब स्वर्ग में जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा? न इमे मृगाः न वराः न पक्षिणः, ये कोई स्वर्ग में जाएंगे क्या? कोई नहीं जाएंगे। ये सुअर है, कुकर है, और ये पक्षी है, ये कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और जंगल में रहते हैं, यदि कोई राजा संन्यास की सिद्धि प्राप्त कर ले तो पर्वत और वृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हरदम जंगल में ही रहते हैं। पर्वत जंगल में ही रहता है और वृक्ष जंगल में खूब होते हैं, ये तो नित्य संन्यासी है और नित्य एकाकी है, निरुपद्रव है, किसी को कोई कहते सुनते भी नहीं है, बल्कि इन पर्वतों के द्वारा कितने प्राणियों का भला होता है, वृक्षों के द्वारा कितने प्राणियों को आश्रय मिलता है। वृक्ष कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता, वृक्ष अपनी छाया में दूसरों को आश्रय देता, अपनी छाया अपने काम में नहीं ले सकता, और पर्वत वृक्ष ये सदा के ब्रह्मचारी हैं, इन सब का कल्याण होना चाहिए। इसलिए महाराज आपके तथ्य आपकी बातें किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है, अतः आप वनवास का विचार यदि करते हो तो सब जनता को बड़ा भारी धोखा देने का काम करते हो। अवेक्ष यथा स्वयं स्वयं कर्म भी व्यापृतम जगत तस्मात कर्मैव कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर अकर्मण है। इसलिए मनुष्य को कर्म में लगे रहना चाहिए, कर्म से सिद्धि होती है, वो बाहर के त्याग से कभी किसी को सिद्धि नहीं मिलती। अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा। अब अर्जुन कहने लगे, महाराज मेरे अग्रज भीमसेन की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, मैं आपको एक इतिहास सुनाना चाहता हूं। वो इतिहास अब ये अर्जुन कल की कथा में सुनाएंगे।
सीतारा
राम श्री राम राम श्री राम
राम श्री